We greet each and every one of you seated before your television, waiting for this program in the mighty, powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior.
हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी दर्शक जो अभी इस समय इस प्रोग्राम की राह देख रहे हैं, आप सभी को यीशु के नाम में हम अभिवादन करते हैं।
I'm sure you're all going to be excited about today's topic.
और मैं निश्चय ही जानती हूँ कि आज के विषय के बारे में आप सुनकर बहुत ही उत्साहित हो जाएंगे।
We are introducing the second coming of Jesus Christ.
हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं।
Last episode,
पिछले एपिसोड में
I was able to explain to you how the word Easter came into existence.
मैंने आपको ये बताया था कि ईस्टर ये जो शब्द है ये किस तरह से अस्तित्व में आया है.
And we also call it the Resurrection Sunday.
और साथ साथ में हम इसे पुनरुत्थान का रविवार भी कहते हैं.
Maybe when we think of resurrection,
और जब हम पुनरुत्थान के बारे में सुनते हैं,
We are reminded of Jesus Christ who was crucified and resurrected on the third day.
तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में याद दिलाया जाता है कि जो कि क्रूस पे चढ़ाया गया था और वो तीसरे दिन जी उठा था.
When we say resurrection,
और जब हम कहते हैं पुनरुत्थान,
We always connect with crucifixion.
तो हम हमेशा इसे क्रूसीकरण के साथ में जोड़ देते हैं.
Also, we remember how the Israelites were saved from death.
और साथ साथ में हम भी इस बात को याद करते हैं कि कैसे इसराइली लोग मृत्यु से बचे थे.
On the Passover day of Egypt.
मिस्र में फसह के दिन में वो कैसे बचाए गए थे, फसह के दिन में कैसे वो मिस्र में जीवित रहे.
If we think a little deeper,
और अगर इसमें हम थोड़ा सा गहराई से सोचते चले जाएं,
the Passover day and Jesus' crucifixion and resurrection occurred as the perfect plan of God.
कि फसह का जो दिन है वो तो, और साथ साथ में यीशु का जो क्रूसीकरण का जो दिन है और पुनरुत्थान का दिन है, ये तो परमेश्वर की सिद्ध योजना के अनुसार ही किया गया है.
Jesus Christ always wanted to fulfill all the prophecies as per God's plan.
और परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने जितने भी भविष्यवाणी की थी, यीशु मसीह उसे पूरा करना चाहता था.
So if we read, the current topic of today is the book of Acts.
और जैसे कि आज के मुख्य विषय के बारे में हम देखते हैं, ये तो प्रेरितों के काम की किताब में पाया जाता है.
Luke explains after verifying all details in Acts chapter 1 and verses 9 to 11.
लूका जो है प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 9 से लेकर 11 तक, इन सारी बातों को देखकर इन वचनों में वो सारी बातों को जांच कर लिखता है.
And when he had spoken these things,
और जब उसने इन बातों के बारे में कहा,
While they beheld,
उनके देखते देखते,
he was taken up,
वो ऊपर उठा लिया गया,
and a cloud received him,
और बादलों ने उनकी आँखों से उसे छिपा लिया,
out of their sight,
उनकी आँखों से उसे छिपा लिया,
and while they looked steadfastly,
और जबकि वो ऐसे स्थिरता से देख रहे थे,
towards heaven, and as he went up,
और वो स्वर्ग की ओर देख रहे थे, और जैसे यीशु उनके सामने ऊपर उठाया गया,
behold,
देखो,
two men stood by them in white apparel.
तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए.
And again, Luke writes in 11th verse.
और यहाँ पर देखिए वचन 11 में लूका इस तरह से लिखता है,
ye men of Galilee,
हे गलीली पुरुषों,
why stand ye gazing up into the heavens?
तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो?
The same Jesus,
यही यीशु,
which is taken up from you,
जो तुम्हारे पास से उठा लिया गया है,
into heaven,
जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है,
shall so come in like manner,
जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है,
as you have seen he has gone into the heavens,
जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उस रीति से वो फिर आएगा.
So from this day forward, people have been expecting that Jesus is going to come back.
यानी इस दिन से आगे लोग इस बात की अपेक्षा करने लगे कि यीशु जरूर वापस आएगा, वो इस तरह अपेक्षा करने लगे.
Nobody was able to guess or predict when he shall come back.
कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता है कि वो किस समय वापस आएगा या उसकी वापसी जो है वो कब होगी।
Even Bible scholars clarify.
और यहाँ तक कि बाइबल के जो विद्वान हैं वो भी इसके बारे में स्पष्ट कहते हैं।
They delayed writing the history of Jesus Christ because they thought he will come back.
उन्होंने यीशु मसीह के इतिहास को लिखने में इसलिए देरी की क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यीशु मसीह निश्चय ही जल्दी वापस आएगा।
Till today we all are expecting him.
और आज भी हम सब उसकी अपेक्षा कर रहे हैं।
We are absolutely sure that he is coming back.
हम इस बात के बारे में निश्चित है कि वो तो जरूर वापस आएगा।
But we don't know when.
लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कब आएगा।
The second coming is very important.
दूसरा आगमन तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
Because it will come at a time when the world is in most need of a righteous king.
क्योंकि वो तो निश्चय ही उस समय आएगा जब संसार में धर्मी राजा की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत होगी।
Perhaps no event in the history of the world is as anticipated as the second coming.
और सच में देखा जाए तो संसार में दूसरी और कोई ऐसी घटना नहीं जिसका इतना ज्यादा इंतजार किया है जैसे कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार किया गया है।
Every generation of believers, including the ones in the New Testament.
हर एक पीढ़ी के विश्वासी और इनमें तो नए नियम में जितने विश्वासी थे वो लोग भी हैं।
Have strongly believed that Jesus would return in their lifetime.
उन्होंने मजबूती से ये विश्वास किया कि उनके जीवन काल में ही यीशु मसीह वापस आएगा।
In his first coming, Jesus Christ.
और अपने पहले आगमन में यीशु मसीह
came as a baby in a manger at Bethlehem.
बेतलहम में एक चरनी में वो बालक के रूप में आया, वो तो बहुत ही छोटे रूप में आया था।
Just as it was prophesied.
जैसे कि उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी।
Jesus fulfilled many of the prophecies of the Messiah.
यीशु मसीह ने मसीहा की बहुत सी जो भविष्यवाणियां हैं, उन सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया है।
During his birth and his life and ministry.
उसने अपने जन्म में, अपने जीवन काल में और अपनी सेवकाई में उन भविष्यवाणी को पूरा किया।
Also inclusive his death and resurrection.
और साथ साथ में अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान में भी उसने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया है।
However, there are some prophecies.
लेकिन कुछ भी हो, ऐसी कुछ भविष्यवाणियां हैं
regarding the Messiah Jesus.
जो कि यीशु मसीह के बारे में है, यीशु के बारे में है।
He has not yet fulfilled.
जो अब तक पूरी नहीं हुई है।
The second coming of Jesus.
यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है।
Christ will be the return of Jesus Christ to fulfill these remaining prophecies.
और वो इसलिए होगा कि जो बाकी रह गई भविष्यवाणी है, उन सारी भविष्यवाणियों को वो पूरा कर दे।
In the first coming.
पहले आगमन में।
Jesus was the suffering servant.
यीशु तो दुख उठाने वाला दास था, इस तरह से हम देखते हैं।
In the second coming,
और दूसरे आगमन में,
please note,
आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए,
Jesus will be coming as a conquering king.
यीशु जो है वो तो एक जयवंत राजा के रूप में आने वाला है।
In the first coming,
पहले आगमन में,
Jesus arrived in the most humble of circumstances.
यीशु जो है वो तो बहुत ही नम्रता की ऐसी परिस्थिति में आया था।
In the second coming, Jesus will arrive with the armies of heaven by his side.
और यीशु जो है दूसरे आगमन में अपने साथ में स्वर्ग की सेना को लेकर आएगा।
The minor prophet Zechariah, who lived 500 years before the birth of Jesus Christ.
छोटा भविष्यवक्ता जकरिया जो कि यीशु मसीह के जन्म के लगभग 500 साल पहले जीवित था।
He prophesied in Zechariah 14:4.
उसने जकरिया अध्याय 14 वचन 4 में ये भविष्यवाणी की।
And that says.
और ये भविष्यवाणी में कहा है?
And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives.
उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा।
Which is before Jerusalem and the east.
जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है।
And the Mount of Olives shall cleave.
तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर
In the midst thereof,
पश्चिम तक
towards the east and towards the west.
बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा।
And if you compare with what Luke wrote in Acts chapter 1 verses 13.
और लूका ने जो प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 13 में कहा है, अगर इसके साथ इसकी तुलना करते हैं तो आप पाएंगे
We can conclude the location of his coming.
हम उसके आने का जो जगह है उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
And that is Mount Olives.
और वो तो जैतून का पर्वत है।
Surely the second coming of Jesus Christ.
निश्चय ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो होगा ही।
To the earth is one of the most momentous events that will ever happen.
इस पृथ्वी पर अब तक जितनी भी घटना हुई है उनमें ये घटना तो सबसे अद्भुत होगी और ये घटना सबसे महान होगी।
Now let us see what the gospel writers have written on the second coming.
अब चलिए देखते हैं कि सुसमाचार के लेखकों ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में क्या क्या लिखा है।
If we read the book of Matthew chapter 24 and chapter 25.
अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 25 को यहाँ पर पढ़ते हैं तो पाएंगे
Jesus at the end of his ministry,
कि यीशु अपनी सेवकाई के बिल्कुल अंत में
After reaching Jerusalem,
यरूशलेम में पहुंचने के बाद
which was his last visit,
जो कि उसकी ये आखिरी मुलाकात थी
explains in detail how the destruction of the world will happen.
ये विवरण से बताता है कि संसार का जो विनाश है वो किस तरह से होगा।
And finally he says in chapter 24 and verse 30.
और फिर अंत में अध्याय 24 वचन 30 में यीशु इस तरह से कहता है
And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven.
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा।
And then shall all the tribes of the earth mourn.
और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे।
And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven.
और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे।
With power and great glory.
बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आते देखेंगे।
Mark also writes this about in Mark chapter 13.
और मरकुस भी इसके बारे में मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 में लिखता है।
What made Jesus to tell about his second coming?
किस बात के कारण यीशु ने यहाँ पर अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया था? हम इस बात को देख सकते हैं।
So after he visited the temple,
यानी वहाँ पर भवन में आने के बाद,
remember that this temple was built by King Herod.
याद रखिए, ये जो भवन है, ये तो राजा हेरोदेस ने बनाया था।
And amazingly, it took 46 years to complete.
और इसे पूरा करने के लिए अद्भुत रीति से 46 साल लग गए।
If you read Matthew 24 and verses 1 and 2.
अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 1 और 2 पढ़ते हैं,
Jesus went out.
यीशु बाहर जाता है।
And he departed from the temple.
और वो उस भवन के पास से जाता है।
And his disciples came to him forish to show him the buildings of the temple.
और उसके जो चेले थे वो तो उस भवन की बिल्डिंग को उसे दिखाना चाहते थे कि ये कितनी सुंदर है।
And Jesus said unto them,
और यीशु ने उनसे कहा,
See not all these things,
तुम ये सब देख रहे हो ना?
Verily I say unto you,
मैं तुमसे सच कहता हूँ,
they shall not be left there one stone upon another.
यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा।
That shall not be thrown down.
यानी सारे पत्थर ढा दिए जाएंगे।
So this prophecy was fulfilled in 70 AD.
यानी ये जो भविष्यवाणी है, ये तो ईसवी सन 70 में पूरी हो गई थी।
When the Roman general Titus burned the whole city, including the temple.
जब रोमी जनरल टाइटस ने पूरे यरूशलेम के नगर को जला दिया था और उसने उस भवन को भी पूरी तरह से जला दिया था।
Since the temple was laid with golden plates.
क्योंकि जो भवन है वो तो सोने की प्लेट पर बनाया गया था, अच्छी तरह से बनाया था।
The gold melted because of the heat and went and filled the cracks in the ground.
और उसके कारण जो सोना है वो गर्मी के कारण पिघल गया और जमीन की दरारों में वो पूरी तरह से चला गया था।
Seeing this,
और इन सारी बातों को देखकर,
the Roman soldiers dug each stone to collect the gold.
रोमी सिपाहियों ने एक एक पत्थर को खोद कर निकाला ताकि उसमें जो सोना है उस सारे सोने को वो अपने साथ ले सके।
This is an amazing fact.
और ये तो एक अद्भुत ऐसी सच्चाई है।
That is why this prophecy was exactly fulfilled 40 years after the death of Jesus Christ.
और इसलिए ये जो भविष्यवाणी है ये तो यीशु मसीह के मृत्यु के बिल्कुल 40 साल के बाद में पूरी तरह से पूरी हो गई थी।
In the last phase of his ministry,
यीशु मसीह की सेवकाई के अंतिम समय में,
Jesus came 7 days before the Passover festival.
यीशु मसीह फसह के पर्व के 7 दिन पहले वहाँ पर आ जाता है।
During the day, he is to preach in the temple.
और दिन के समय में वो भवन में प्रचार किया करता था।
And in the evening he used to go to Mount Olive.
और शाम के समय में वो जैतून पहाड़ पर जाता था।
Apparently this was nearby.
और अवश्य ही ये जो पहाड़ था वो तो पास में ही था।
At this time when he was alone, the disciples asked him.
और इस समय जबकि वहाँ पर अकेला था, उस समय चेलों ने उससे ये सवाल पूछा।
Tell us, when shall all these things be?
हमें बता कि ये सारी बातें कब होने वाली हैं।
And what shall be the sign of thy coming?
और तेरे आगमन का जो चिन्ह है वो किस तरह से होगा?
And of the end of the world.
और संसार का, जगत का जो अंत है वो कैसे होगा?
Then Jesus tells them in detail all the things that are going to take place.
और यीशु उन्हें उन सारी बातों को जो होने वाली है उसे विवरण से बताता है।
Definitely the disciples may not have understood what Jesus was talking about.
अवश्य ही यहाँ पर यीशु जो कुछ भी कह रहा था उन सारी बातों को चेले तो अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे।
Today, for us, it seems relevant.
और आज हमारे लिए ये तो बहुत ही व्यवहारिक दिखाई देता है।
So to make it more understandable in the 25th chapter of Matthew,
और मत्ती के अध्याय 25 में इन बातों को वो और भी समझा कर बताता है कि हम इसे जान सकें।
Jesus tells three parables.
यहाँ पर यीशु तीन दृष्टांतों में बताता है।
You all know this, I'm sure. This is about the 10 virgins who are preparing to meet the bridegroom.
और आप निश्चय इन दृष्टांतों को जानते हैं। इनमें से एक है 10 कुवारियों का दृष्टांत जो उस दूल्हे से मिलने के लिए जाने को तैयार थी।
5 wise virgins went in with extra jars of oil, but the foolish ones did not.
5 जो बुद्धिमान कुवारियां थी वो अपने साथ में अतिरिक्त तेल लेकर गई, लेकिन जो मूर्ख कुमारियां थी वो अपने साथ में अतिरिक्त तेल लेकर नहीं गई।
Suddenly the bridegroom arrived late at midnight.
और फिर आधी रात को देरी से अचानक जो दूल्हा है वो आ गया।
The foolish ones went in search of oil.
और जो मूर्ख कुमारियां थी वो तो तेल ढूंढने के लिए निकल पड़ी।
And when they returned, the door was closed.
और जब वो वापस आई तो उस समय दरवाजा बंद हो चुका था।
Jesus Christ through this parable was telling that the second coming would be very sudden.
इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह यही तो बता रहा था कि यीशु का जो दूसरा आगमन है वो तो बहुत ही अचानक होने वाला है।
So he is taking us to be prepared always to receive the bridegroom.
और वो चाहता है कि हम हमेशा तैयार रहे कि जब दूल्हा आएगा हम उसे स्वीकार कर सके।
Because
क्योंकि
We do not know the day or the hour the Son of Man will come.
हम नहीं जानते हैं कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा, वो समय और घड़ी नहीं जानते हैं।
In the same chapter, Jesus tells us one more parable.
और इसी अध्याय में यहाँ पर यीशु हमें एक और दृष्टांत बताता है।
Jesus talks about the talents a master gives to different people.
यीशु यहाँ पर उन तोड़ों के बारे में बताता है जो एक स्वामी ने अलग अलग लोगों को दिया था, उन तोड़ों के दृष्टांत बताता है।
To the one he gave 5.
एक को उसने 5 तोड़े दिए थे।
And the one received 2 talents.
और एक को 2 तोड़े मिले थे।
Multiplied it.
और उन दोनों ने उसे बहुगुणित किया था।
The one who received 1 returns it back without utilizing his talent.
और एक जिसे एक ही तोड़ा मिला था, उसने अपने तोड़े का उपयोग किए बिना वही तोड़ा उसे वापस कर दिया था।
God wants each one of us to use the talent as he has given us and not to waste it.
परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी योग्यताओं को, अपने तोड़ों को उपयोग करते चले जाएं और किसी भी रीति से उसे व्यर्थ न गवाएं।
The one who never used his talent,
जिसने अपने तोड़े का कभी उपयोग नहीं किया था,
loses whatever he got.
तो उसके पास जो कुछ उसे मिला वो भी उसे खो बैठता है।
And if you read the 30th verse,
और अगर आप यहाँ पर वचन 30 पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे।
We see not only he loses, but what he had also is punished for not using it.
और देखिए उसने केवल उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसने उसका उपयोग नहीं किया, इसके कारण उसे दंड भी दिया जाता है।
I hope this message goes through to many hearts and God will change it.
और मैं आशा करती हूँ कि ये संदेश बहुत से लोगों के दिल में जाएगा, प्रभु आपको बदल देगा।
We spend a lot of time for ourselves.
हम अपने लिए बहुत सा समय बिताते हैं।
And our families for work, business, rest, entertainment and other activities.
और हम अपने परिवार के लिए काम, व्यापार और मनोरंजन और दूसरे कामों में इस तरह से अपना समय बिताते चले जाते हैं।
Now listen carefully.
अब आप जरा गौर से सुनिए.
Have we ever calculated in 24 hours how much time we are spending for God?
क्या आपने कभी इस बात के बारे में जरा सोचा है कि 24 घंटे में आप कितना समय परमेश्वर के लिए देते हैं?
The Bible tells at least 1/10.
बाइबल कहती है कि कम से कम दसवां भाग उससे दें.
This is what God is saying here.
यहाँ पर परमेश्वर यही तो कह रहा है.
In our own circle, we have seen people who, whenever they get a holiday or have spare time, they go out to do the ministry.
पुराने जमाने में हम देखते थे कि जब भी लोगों के पास थोड़ा सा भी कुछ समय होता, तो वो सेवकाई के लिए बाहर जाया करते थे.
They also set apart a portion of their earning to help in building churches and other related work.
और वो अपनी कमाई में से एक हिस्सा निकाल के रखते थे, ताकि वो चर्च बनाने के लिए और ऐसे दूसरे कामों के लिए भेंट दे सके.
These are the people that Jesus is talking about.
प्रभु यीशु यहाँ पर इन्हीं लोगों के बारे में बातें कर रहा है.
The one with 5 talents.
एक जिसके पास 5 तोड़े थे.
And the one with 2 talents.
और जिसके पास में 2 तोड़े थे.
Whereas lazy people and those who do not want to do anything for the ministry.
और जबकि देखा जाए तो आलसी लोग और ऐसे लोग जो कि सेवकाई के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं.
Jesus compares them to the man with a single talent.
यीशु उनकी तुलना उस मनुष्य के साथ में करता है जिसके पास में केवल एक ही तोड़ा था.
Let us see what the third parable says.
तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर तीसरा दृष्टांत क्या कहता है.
He talks about goats and sheep.
वो यहाँ पर भेड़ और बकरियों के बारे में हमें बताता है.
That is separated into 2 categories.
जो कि 2 अलग-अलग विभागों में बांटे जाते हैं.
This separation happens on a certain criteria if you read verses 35 and 36.
अगर आप वचन 35 और वचन 36 पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो अलग किया जाना है इसके लिए कुछ एक निश्चित तरीका है.
One group did for the poor from the possessions they had.
एक समूह के लोगों ने जो कुछ भी उनके पास में था उसके द्वारा गरीब लोगों के लिए कुछ न कुछ किया था.
Whereas the other did nothing for the poor.
जबकि दूसरे लोगों ने कंगालों के लिए कुछ भी नहीं किया था.
Then God looks at the ones who helped the poor and tells them.
और फिर उसके बाद में परमेश्वर उन लोगों की ओर देखता है जिन्होंने गरीबों की मदद की थी, उनसे कहता है,
Whatever they have done unto the one of the least of the brethren, you have done it unto me.
जो कुछ भी तुमने छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया है, वो तो तुमने ऐसा किया जैसे कि मानो तुमने वो मेरे लिए किया हो.
God has blessed us with all material blessings such as houses, cars and other comforts.
परमेश्वर ने हमें सारी भौतिक आशीषों से आशीषित किया, जैसे कि घर, कार और दूसरी जो चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है, वो सब प्रभु की आशीष से मिली हैं.
And we do not give a thought for the poor.
और हम गरीबों के लिए बिल्कुल कुछ भी विचार नहीं करते हैं.
Therefore, Jesus emphasizes here that whatever we do for the poor, we do it unto him.
और इसलिए यीशु यहाँ पर इस बात पर जोर देता है कि जो कुछ भी हम गरीबों के लिए करते हैं वो तो मानो ऐसा है कि हमने स्वयं यीशु के लिए उसे किया है.
These 3 parables Jesus told us to help us and to be prepared.
और ये 3 दृष्टांत यीशु ने हमें बताए कि ये हमें तैयार कर सके और तैयार होने में ये हमारी मदद कर सके.
In the first parable, he wants us to be prepared for the second coming, having the preparedness of having done enough deeds in our lives.
और यहाँ पर पहले दृष्टांत में वो हमें बताता है कि हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं, अपने जीवन में जो जो जरूरी काम है उन सारी बातों को करके हम तैयार हो जाएं.
In the second parable,
और यहाँ पर दूसरे दृष्टांत में,
Jesus stresses us to be fruitful and multiply ourselves to do His work.
यीशु इस बात पर जोर देता है कि हम फलवंत होते चले जाएं और अपने आप को उसके कामों के लिए तैयार करें और निश्चय ही उसके काम करके हम खुद को तैयार करते चले जाएं.
He does not want us to be idle or lazy.
और वो नहीं चाहता है कि हम किसी भी तरह से ऐसे बेकार बैठे रहें या आलसी हो जाएं.
In the third parable,
और तीसरे दृष्टांत में,
He emphasizes whatever we do for the poor, we have done it for him.
वो इस बात पर जोर देता है कि हमने जो कुछ भी कंगालों के लिए किया है, ये सब हमने उसी के लिए, प्रभु के लिए किया है.
Though these 3 parables look like simple stories.
और हालांकि ये 3 दृष्टांत बहुत ही सरल ऐसी कहानियों के जैसे दिखाई देते हैं.
If you read or look it deeper, it is a warning for us.
अगर आप इसे देखें और गहराई से देखें, तो ये हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ी चेतावनी है.
The Bible says,
बाइबल ये कहती है,
that day and hour knoweth no man,
कि कोई भी मनुष्य उस घड़ी को और उस समय को नहीं जानता है,
no, not the, even the angels of heaven,
और स्वर्ग के स्वर्गदूत भी उस समय के बारे में नहीं जानते हैं,
but my father only,
लेकिन मेरा पिता ही इसे जानता है.
So the second coming of Jesus is going to be sudden and unannounced.
और इसलिए यीशु का जो दूसरा आगमन है वो तो अचानक होने वाला है और उसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी जाएगी.
Are we prepared to meet him?
क्या हम उससे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं?
I hope to God and pray that your hearts have been opened and you have heard the message, so you can't deny that you did not hear the message.
और मैं इस बात की आशा करती हूँ कि आपका हृदय खुला है और आपने संदेश को सुना है, यानी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपने इसके बारे में कोई संदेश नहीं सुना है.
The second coming has lots and lots of facts, and we need to understand this is only the touch, the hem of the garment.
और दूसरा आगमन जो है इसके तो बहुत सी सच्चाई है और हमें इस बात को समझना होगा कि हम बस इसके कुछ छोटे छोटे भागों को ही देख रहे हैं.
If you are interested, you can read ahead. It's all in the Bible. There's nothing new there. And you need to go over it and understand it and digest it and be a vessel for God's kingdom.
अगर आप इसमें दिलचस्पी लेते हैं तो आप आगे बढ़िए, बाइबल में से पढ़िए. ये बिल्कुल स्पष्ट रीति से बताया गया है. आप इसे समझ लीजिए, इसे जान लीजिए और निश्चय ही परमेश्वर के राज्य के लिए आप बहुत ही सहायक व्यक्ति हो जाएं.
It is our prayer. From here, we would like many hearts to be touched. To do the God's will and God's work.
ये हमारी प्रार्थना है कि यहाँ से हम बहुत से लोगों के दिलों को प्रज्वलित करें कि वो परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के कामों को पूरा करते चले जाएं।
May God bless each and every one of you.
परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे.
And your families.
और आपके परिवार को आशीष दे.
So you will be awakened to the second coming of Jesus Christ.
कि आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह से सचेत हो जाए, पूरी तरह से जागरूक हो जाएं.
Till we meet again next week, God be with you.
अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करने तक परमेश्वर आपके साथ में बना रहे.
Yom Shemeir, Hallelujah, Al Ma Shehayah.